इर्मिया 51वां बाब। खुदावंद यूं फरमाता है, देख मैं बाबल पर और लेब कामाई के बाशिंदों पर एक हलाक करने वाले की रूह उभारा चाहता हूं, और मैं बाबल पर फटकने वालों को भेजूंगा और वो उसे फटकेंगे और उसके मुल्क को खाली करेंगे, क्योंकि वो उसकी मुसीबत के दिन उसके चारों तरफ उसके खिलाफ होंगे। कमान कश अपनी कमान खेंचे और अपनी जिर्रा के साथ आए, तुम उसके जवानों को बाकी न रहने दो, उसके सारे लश्कर को हलाक करो। देख कलदानियों के मुल्क में मकतूल और उसके कूचों में छिदे हुए पड़े हैं, क्योंकि इसराइल और यहूदा अपने खुदा से यानी रब्बुल अफवाज से रंडापे में नहीं छोड़े जाते हैं। हालांकि उनका मुल्क इसराइल के कुद्दूस की नाफरमानी से भरा है। बाबल के दरमियान से भागो और हर एक अपनी जान को बचाए, उसकी बदी में शरीक होकर हलाक ना हो, क्योंकि ये खुदावंद के इंतकाम का वक्त है। बस वो उसे बदला देगा। बाबल खुदावंद के हाथ में एक सोने का प्याला था जो तमाम दुनिया को मतवाला करता था। कौमों ने उसकी मै में से पिया, इसलिए वो दीवाने हैं। बाबल नागहां गिर गई और बर्बाद हुई, उस पर वावेला करो, उसके दर्द के लिए बलसान लो, शायद उसे शिफा हो जाए।
हमने बाबल का इलाज किया पर वो अच्छी ना हुई, उसे छोड़ दो और हम हर एक अपने मुल्क को चले जाएं, क्योंकि उसकी सजा अफलाक तक पहुंचती है और बादलों तक बुलंद है। खुदावन ने हमारी सदाकत को आशकारा किया, बस आओ हम सेहून में खुदावंद अपने खुदा के काम का बयान करें। तीरों को तेज करो, तरकशों को भर लो, क्योंकि खुदावन ने शाहे मदाई की रूह को उभारा है और बाबल के खिलाफ इरादा किया कि उसे बर्बाद करे, क्योंकि यह खुदावंद का इंतकाम यानी उसकी हैकल का इंतकाम है। बाबल की फसीलों के मुकाबिल झंडा खड़ा करो, पहरे की चौकियों को मजबूत करो, निगहबान मुकरर करो, कमीन गाहें तैयार करो, क्योंकि खुदावंद ने जो इरादा किया यानी जो कसद बाशिंदगान ने बाबल के खिलाफ किया वो पूरा करता है। ऐ तू जो नहरों पर रहने वाली और भारी खजानों वाली है, तेरा अंजाम आ पहुंचा और तेरी हराम खोरी हद तक पहुंची। रब्बुल अफवाज ने अपनी जात की कसम खाई है कि हालांकि मैंने मलख की मानंद तुझे आदमियों से भर दिया तो भी तेरे खिलाफ ललकारा जाएगा। वो जिसने जमीन को अपनी कुदरत से बनाया और जहान को अपनी हिकमत से कायम किया और अफलाक को अपनी दानिश से फैलाया, उसकी आवाज पर आसमान में बहुत पानी का शोर होता है। वो बुखारात को जमीन के किनारों से उठाता और मी के लिए बिजलियों को पैदा करता। और हवा को अपने मखजनों से निकालता है। हर एक आदमी इल्म के लिहाज से कुंद ज़हन हो गया और हर एक जरगर अपनी मूरत से शर्मिंदा होता है, क्योंकि उसकी ढाली हुई मूरत झूठ है और उसमें जान नहीं। ये चीजें बातिल और ये कारीगरी काबिले तमस्कुर है, और उनकी सजा के वक्त में वो फना हो जाएंगी। याकूब का बकरा उनकी तरह नहीं, क्योंकि वो सब चीजों का खालिक है और इसराइल उसकी मीरास का कबीला है, रब्बुल अफवाज उसका नाम है।
तू मेरा हथौड़ा और जंगी हथियार है, बस मैं कौमों को तुझसे तोड़ डालता हूँ और ममलकतों को तुझसे बर्बाद करता हूँ, और मैं तुझसे घोड़े और सवार को तोड़ डालता हूँ और तुझसे रथ और उसकी सवारी को तोड़ डालता हूँ, और मैं तुझसे मर्द व जन को तोड़ डालता हूँ और तुझसे बूढ़े और बच्चे को तोड़ डालता हूँ, और तुझसे लड़के और लड़की को तोड़ डालता हूँ, और तुझसे चरवाहे और उसके गल्ले को तोड़ डालता हूँ, और तुझसे किसान और उसके जोड़ी बैल को तोड़ डालता हूँ, और तुझसे सरदारों और हाकिमों को तोड़ डालता हूँ। यूं मैं बाबल को और तमाम बाशिंदगाने कल्दान को उस सारी बदी का बदला दूंगा जो उन्होंने तुम्हारी आंखों के सामने सहून से की थी। यूं खुदावन का फरमान है, देख मैं तेरे खिलाफ हूं ऐ मुफसिद पहाड़। यूं खुदावन का फरमान है, जो सारी जमीन को बिगाड़ता है, मैं अपना हाथ तुझ पर बढ़ाता हूँ और चट्टानों पर से तुझे लुढ़का कर तुझे जला हुआ पहाड़ कर देता हूँ, तो तुझसे कोई पत्थर कोने के लिए और कोई पत्थर बुनियाद के लिए ना लिया जाएगा, बल्कि तू अब्दी वीराना होगा। यूं खुदावंद का फरमान है, मुल्क में झंडा नसब करो और कौमों के दरमियान नरसिंगा फूंको, कौमों को उसके खिलाफ तैयार करो, और अरारात और मिन्नी और अशकनास की ममलकतों को उसके खिलाफ बुलाओ, उसके खिलाफ सिपा सलार मुकर्रर करो, और डसने वाली मल्ख की मानिंद घोड़ों को चढ़ा लाओ, उसके खिलाफ कौमों को मखसूस करो, शाहे मादाई और उसके सरदारों को और उसके सब हाकिमों और उसकी सल्तनत की सारी सरजमीन को, और जमीन हिलती और कांपती है क्योंकि बाबल के खिलाफ खुदावंद का हर इरादा कायम रहता है कि बाबल की सरजमीन को वीरान करे और उसमें कोई बसने वाला ना हो। बाबल के बहादुर लड़ाई से बाज रहे और कलों में जा बैठे और उनकी दलेरी जाती रही, वो औरतों की मानिंद हो गए और उनके मस्कन जलाए गए और उनके अड़बंगे तोड़े गए, एक हरकारा दूसरे हरकारे से मिलने को और एक कासिद दूसरे कासिद से मिलने को दौड़ता है। ताकि बाबल के बादशाह को खबर दे कि उसका शहर एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले लिया गया, हत्ता के घाट पकड़ लिए गए और जंगल आग से जलाए गए और जंगजू मर्द हैबत जदा हुए।
क्योंकि रब्बुल अफवाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि बाबल की बेटी गाहने के वक्त के खलियान की मानंद है और थोड़ी मुद्दत बाद उसकी फसल के काटे जाने का वक्त आ जाएगा। शाह बाबल नबूकदनिस्सर ने मुझे खा लिया और मुझे बेचैन कर दिया और मुझे खाली बर्तन बनाया, वो मुझे अजदहा की मानंद निगल गया और मेरी लजीज चीजों से अपना पेट भर लिया, फिर मुझे बाहर फेंक दिया। सिहून की रहने वाली कहे कि मेरा मजलूम गोश्त बाबल पर पड़े और यरूशलेम कहे कि मेरा खून बाशिंदगान कुलदान पर हो। इसलिए रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है, देख मैं तेरे मुकदमे के लिए झगड़ूंगा और तेरा इंतकाम लूंगा और उसके समुंदर को सुखा दूंगा और उसके चश्मे को खुश्क करूंगा और बाबल खंडर और गीदड़ों का मस्कन और बायस इब्रत और बायस तमस्खुर हो जाएगा, उसमें कोई बसने वाला ना होगा। वो जवान शेरों की मानंद इकट्ठे गरजेंगे और शेर बच्चों की तरह गुर्राएंगे। उनकी हालत तैश में मैं उनकी ज़ियाफ़त करके उन्हें मस्त करूंगा ताकि वो वजद में आएं और अबदी नींद में सो जाएं और फिर ना जागे, यूं खुदावंद का फरमान है। और मैं उन्हें बर्रों की तरह और मींडों की मानंद मां बकरों के मसलख पर उतार लाऊंगा।
शीशाक किस तरह ले लिया गया और तमाम दुनिया का फकर पकड़ा गया, कौमों के दरमियान बाबल कैसे बाइसे इब्रत बन गया, समुंदर बाबल पर चढ़ आया तो वो उसकी मौजों की कसरत से छुप गया, उसके शहर दश्त और खुश्क जमीन और सहरा बन गए जिसमें कोई इंसान नहीं बसता और जिसमें से कोई आदम ज्यादा नहीं गुजरता। मैं बाबल में बाल को सजा दूंगा और जो कुछ उसने निगला है उसके मुंह से निकालूंगा और फिर कौमें उसके पास रवाना होंगी, क्योंकि बाबल की फसील पड़ी रहेगी। ऐ मेरी उम्मत, उसके दरमियान से निकल आ और खुदावंद के गजब की तेजी से हर एक अपनी जान बचाए और तुम्हारा दिल ना घबराए और तुम उस खबर को सुनकर खौफ जदा ना हो जो मुल्क में सुनी जाएगी, क्योंकि एक बरस एक अफवाह आएगी और उसके बाद के बरस में दूसरी अफवाह और मुल्क में एक हाकिम दूसरे हाकिम पर जोरावरी करेगा। इसलिए देख, वो दिन आते हैं कि मैं बाबल की तराशी हुई मूरतों को सजा दूंगा और उसकी तमाम सरजमीन घबरा जाएगी और उसके सब मकतूल उसके अंदर पड़े रहेंगे और आसमान और जमीन और जो कुछ उनमें है बाबल पर गीत गाएंगे, क्योंकि गारतगर उस पर शिमाल से आएंगे। यूं खुदावंद का फरमान है। हां, बाबल गिरेगा। ऐ इसराइल के मक्तूलो, यकीनन तमाम दुनिया के मक्तूल बाबल के सबब से कत्ल हुए। ऐ तुम जो तलवार से बच गए हो, चले आओ, मत खड़े हो। दूर दराज मुल्कों में खुदावंद को याद रखो और अपने दिल में यरूशलेम का ख्याल करो। हम शर्मिंदा हैं क्योंकि हम मलामत सुनते हैं और खजालत हमारे चेहरों को ढांप लेती है, क्योंकि खुदावन के घर के मक्तिस में अजनबी लोग घुस आए। इसलिए देख, यूं खुदावन का फरमान है, वो दिन आते हैं कि मैं उसकी तराशी हुई मूर्तों को सजा दूंगा और उसके तमाम मुल्क में जख्मी कराहेंगे। अगरचे बाबल आसमान तक बुलंद हो जाए और अपनी कुव्वत की बुलंदी को मजबूत करे, तो भी मेरी तरफ से उस पर गारतगर आएंगे। यूं खुदावंद का फरमान है।
बाबल से चिल्लाने की और कल्दानियों के मुल्क से बड़ी हलाकत की आवाज है, क्योंकि खुदावन ने बाबल को बर्बाद किया और उसमें से तमाम गुलगुला को नाबूद किया। उनकी मौजें बहरे मुहित की तरह शोर करती हैं और उनकी ललकार उठती है, क्योंकि गारतगर उस पर यानी बाबल पर आता है और उसके बहादुर पकड़े जाते और उनकी कमानें तोड़ी जाती हैं, क्योंकि खुदावंद खुदाए मुंतकिम उसे जरूर बदला देता है। और मैं उसके सरदारों और अक्लमंदों और उसके हाकिमों और उसके सिपाह सालारों और उसके बहादुरों को मदहोश करूंगा, चनाचे वो अबदी नींद में सो जाएंगे और ना जागेंगे। यूं उस बादशाह का फरमान है जिसका नाम रब्बुल अफवाज है। रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि बाबल की चौड़ी फसील बिल्कुल गिरा दी जाती है और उसके ऊंचे फाटक आग से जलाए जाते हैं। यूं कौमों की मेहनत बेफायदा ठहरती है और उम्मतों की मुशक्कत आग के लिए होती है।
बाबल मलून। ये वो बात है जिसका हुक्म इर्मिया नबी ने सिराया बिन नीरिया बिन मासेया को उस वक्त दिया जब वो शाहे यहूदा सिदकिया के हमरा उसके अहदे सल्तनत के चौथे वर्ष में बाबल को गया। सिराया आरामगाह का सरदार था। इर्मिया ने उस पूरी आफत को जो बाबल पर आने वाली थी एक किताब में कलमबंद किया था, यानी ये तमाम बातें जो बाबल के हक में लिखी गईं। और इर्मिया ने सिराया से कहा, जब तू बाबल में आए तो देख इन तमाम बातों को पढ़ और कह, ऐ खुदावन, तूने इस जगह के हक में फरमाया कि तू उसे बर्बाद करेगा तो उसमें कोई रहने वाला ना होगा, ना इंसान और ना हैवान, बल्कि वो अबदी वीराना होगा। और जब तू इस किताब के पढ़ने से फारिग हो तो उसके साथ एक पत्थर बांध और उसे फुरात के दरमियान में फेंक दे और कह, इसी तरह बाबल डूब जाएगी और उस आफत से जो मैं उस पर डालूंगा फिर ना उठेगी। यहां तक यिर्मयाह का कलाम है।